भी आपके अंदर में यह रही कि ये सब दूसरे खाए हैं और हम लगाए थे, ये तो और भी बड़ा भारी फल हो गया। जो अपने खा सकते नहीं खा सकते दूसरों को खिलाता है, ये तो आपने बहुत बड़ा भारी काम किया, फल किया, उसका फल कहाँ जाएगा। दुर्गेश महाराज जी ने धर्मराज जी से कहा, जब स्वर्गारोहण के समय जा रहे थे, द्रौपदी जी पहले गिरी, सहदेव नकुल इत्यादि गिरते गए, अर्जुन गिर गए, भीम गिर गए, उनके पीछे केवल एक चल रहा था कुत्ता। जब सभी के समाप्त होने के बाद में भद्राजी पर से लेकर के आए, अब चलना है अब आपको वहाँ, जैसे ये पहले कुत्ता चढ़ेगा तब मैं चलूँगा, क्योंकि किसी ने साथ में दिया इसने साथ दिया। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे जा सकता है, ये तो नहीं जा सकता, आपने बहुत धर्म कर दिया। अच्छा तो मेरा जितना धर्म कर्म का था वो फल मैं इस कुत्ते को दे देता हूँ। उन्होंने कहा जैसा अब तो मैं नहीं जाऊँगा ना, अब ये जाए। उन्होंने कहा जैसे ये जो आपने सब कर्मों का धर्मों का ये फल इसको दे दिया, इसका जो महान एक और फल हुआ वो तो आपको भोगना, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। धर्मराज प्रसन्न हो गए,
घूम फिर के बात नहीं आ जाती है, आदमी मर के वैसे भगवान जाता था, आदमी मर जाता है, जीते जी तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये करूँ वो करूँ सब लगा रहता है।
नहीं, आप अपने स्टैंडर्ड से ऐसा कर रहे हैं, आप उनकी स्थिति में होते तो ऐसा नहीं,
सभी के रहता है ये
नहीं, सभी का सभी नहीं,
वो कर रहे
हम लोग अपने ज्ञान को कुछ नहीं लेते, कृष्ण के कहे हुए को लेते, गीता भागवत जो कहती है उसको लेते। कर्म को कहीं भी आदर नहीं किया, कर्म बंधन करने वाला है, यदि फल रहित भी हो तो भी बांधेगा, जरूर बांधेगा। आदमी मर कहाँ गया, आप अपनी दृष्टि से विचार कीजिए तो, शरीर तो मरा हुआ है, उसमें रहने वाला मरा नहीं, मरा कौन, इस विचार को गहराई से देखिए तो,
शरीर तो मरा नहीं,
ये तो मिट्टी थी, मिट्टी में मिल गई, मरी कहाँ, हवा में हवा मिल गई, आपने देखा जैसे ये अलग अलग ये हो गए, मरा कहाँ, कोई चीज कोई नष्ट नहीं हुई, कहाँ गया, गया कहीं नहीं,
तो
पानी यहाँ पर पानी मिल गया, हवा में हवा मिल गई,
नजर तो नहीं,
इसलिए मरा नहीं। इसलिए इस आत्म तत्व का बहुत बड़ा कठिन है, इसलिए कर्म मार्ग से निकल करके थोड़ा सा भगवत भक्ति की तरफ सीधा सा, हे प्रभु आप ही हमारे साथ, जो कुछ कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, सीधा न परिश्रम न कुछ भी, न ज्ञान की जरूरत है, बिना ज्ञान की कोई जरूरत नहीं। प्रहलाद महाराज ने इसको ग्रहण किया, सबरी जैसी एक भिलिनी ने राम को इसके द्वारा वशीभूत कर दिया, उस प्रेम के द्वारा, जटायु ने उस भावना के साथ में कौन सा अच्छा कर्म, किंतु अपनी भावना से उनको एकदम बांध लिया अपने प्रेम से। समस्त शास्त्रों का ये भक्ति रे वैनम भक्ति वसो पुरुष भक्ति रे उद्देश्य भक्त्याम ये क्या कर, भागवत का यही गीता का ये, अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद में फिर हम लोग सुनेंगे, अभी कर्म हम करें, सत्कर्म करें, फिर भगवान को अर्पित कर्म करें, इसके बाद में निष्कर्म हो, इसके बाद में चित्त शुद्धि होने पर ज्ञान योग आए, ज्ञान योग के बाद में फिर भक्ति योग आएगी, लंबा प्रोसेस। अकाश यहाँ से पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यलाभे गौरस्थिते। अभी मैं यहाँ पर था रहा, वहाँ पर बैठा था, एक सज्जन मिले कर्मवादी, कर्म करो, कर्म में ही जीवन की चिंता है, गीता में भी कर्मवाद का ही की बात आई, सब कर्म करना चाहिए। और भी उसमें बात बतलाए, उन्होंने कर्म काम फल नहीं चाहिए, कर्म करेंगे। गीता का यही कृष्ण ने अर्जुन को कर्म करने के लिए दिया, क्योंकि उनके उपदेशों के बाद में कृष्ण ने अर्जुन ने युद्ध किया। ये युद्ध का ऊपर से तो स्थूल मोटी बुद्धि वाले लोगों को ऐसा ही दिखता है, मोटी बुद्धि वालों, और जिनका विचार खुद सूक्ष्म है, कुछ विचार कर सकते हैं, उनके लिए कुछ बात भी। आप लोग कर्ण का नाम सुने हो, महाभारत युद्ध के पहले उसकी मैया उनके पास में गई, उनकी रात में मिली, कर्ण ने उनको देख करके जब उनके घर में आई हैं, तो कुंती जी को प्रणाम किया, कुछ आसन देकर के उनकी पूजा की। कुंती जी ने कहा कि बेटा तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी मैया हूँ? जानता तो हूँ, किंतु तुमने तो जन्म होने के साथ ही साथ हमें फेंक दिया, इसलिए हमें जो पाला पोसा बड़ा किया वही हमारी मैया और बाप। ये तो नीति है ना, सबकी नीति है, इसलिए तुमको माँ जानने पर भी हमको जिसने पाला पोसा बड़ा किया, जिन्होंने हमारे जीवन को उत्सार दिया, हमारी शादी इत्यादि कराई, जो भी हमको प्रतिष्ठित किया, वही हमारे माता पिता है। विशेष करके मैं द्रोणाचार्य के पास में गया था, उनको धनुष देश की शिक्षा दी, उस समय अपने प्रैक्टिस चाहिए कर्मों से धनुष बाण मैंने सीखा था, जैसे एक क्लब सीखा था। अर्जुन दिखला रहे थे बाण में कैसे पारंगत है, जो चीज को दिखलाए कर्ण ने वैसा ही दिखलाया, सब रूप अत्यंत आश्चर्य। उनको कुछ थोड़ी सी विद्याएं थी जो नहीं मिली, जैसे ब्रह्म विद्या, ब्रह्मास्त्र उनका छोड़ना इत्यादि नहीं मिला, इसलिए वो द्रोणाचार्य से सीखना चाहते। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को भी सिखलाया था ब्रह्मास्त्र चलाना, किनको लौटाना नहीं सिखलाया था, और अर्जुन को क्या किया था, जो कुछ था अपना सर्वस्व उनको दिया, कर्ण को नहीं दिया। उस समय में उन्होंने कहा जब तुम क्षत्रिय नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं, तुमको आत्मसंयम नहीं, यदि अंततः तुम कोई राजा इत्यादि होता, क्षत्रिय होता, तो उस समय दुर्योधन ने क्या किया, यदि हमारा अंग देश का राज्य उसको मैंने दे दिया और उसको राज्य अभिषेक सबके सामने में कर दिया। उसने देखा जितना वीर है ये, पांडवों से लड़ाई होगी जरूर, इसलिए अपने पक्ष में उसको करने के लिए अंगराज्य दे करके और उसे युद्धता लगा, कर्ण उसका ऋणी हो गया। सबसे जो दुर्योधन जो कहता है वही मानता है, इसलिए अपने मैया से कहा मैया तुम्हारा बेटा तो हूँ, कि तुम जो आई है किस लिए, अब जब काम पड़ा है तब जन्म हुआ तब को फेंक क्यों दिया, तुमने तो पालन पोषण नहीं किया, किंतु सूत ने हमारा पालन पोषण किया, और अंत में महाराज दुर्योधन ने हमारी सहायता की, आज मैं सब लोगों के साथ बीच में बैठा हूँ, लोग मुझे आदर करते हैं, तब तुम क्या चाहती है बतलाओ, तो ये मैं चाहती हूँ कि तुम हमारा ब्याह बेटा है सबसे, तुम लौट आओ हमारे साथ, ये युद्ध होगा, अब तो युद्ध की तारीख भी निश्चित हो गई, इसलिए तुम हमारे पांचों बेटे तुमको सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिए तुम्ही को राजगति दो, तुम ही राजा होगा। उसने कहा कि मैया एक बात है, अभी युद्ध होने दो, जैसे युद्ध में मैं मारा गया तो सब जैसे राजगति पर बैठेंगे और अर्जुन तुम्हारा पुत्र ही है, और अर्जुन ने हमें यदि मार दिया जिस समय में अर्जुन को मैं मारूंगा तो मैं तुम्हारे पक्ष में आकर के अर्जुन के स्थल पर मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, और यदि अर्जुन ने हमें मार डाला तो हमें मारी डाला, तुम्हारे पांच के पुत्र, पांच पुत्र रहेंगे ही। जागतिक नीति, जागतिक कर्म में उसकी बड़ी अद्भुत विलक्षण प्रतिभा थी, उसे बड़ा कर्मी नहीं हो सकता, माता के बचने को भी छुपा, यहां तक कि कृष्ण उनके पास में आए एकदम एक क्षण में, अब यही दूसरे दिन युद्ध होने वाला था, कृष्ण उसके पास में आए, बहुत सी बातें उसको समझाया, बहुत बातें समझाया, समझाने के बाद आपका अभिप्राय क्या है साफ करिए, तो मैं चाहता हूं कि पांडवों के तरफ से युद्ध करते वो धर्म के पक्ष में, ये अधर्म है, मैं कहने जानता हूं अधर्म है किंतु मैं इनका उनको नहीं छोड़ता किसी भी स्थिति में, अब तो ये युद्ध होना है, या तो अर्जुन मरेगा या मैं मरूंगा, दोनों में कोई एक ही मरेगा, देखिए ऐसा नीति का, अब ये तो नीति की बात है, धार्मिक कैसा, कर्मी कैसा, सब कर्मी युद्ध होने के पहले या युद्ध हो रहा था, कर्ण पर्व आने वाला था, भीष्म पिताजी मारे गए, मारे गए मैंने वो सत्यज्ञा, और द्रोणाचार्य जी मारे गए, इसके बाद में कर्ण सेनापति, उसने प्रतिज्ञा की कि मैं कल मारूंगा अर्जुन को, जरूर मारूंगा। इंद्र जी आए उनके पास, कर्ण के पास, कृष्ण ने प्रेरणा दी है जाओ उसके पास, जाकर के फिर ब्राह्मण के गरीब, ब्राह्मण के रूप में आए और हाथ जोड़ करके कर्ण के सामने खड़े हुए, उसने अपने आसन से उठ करके ब्राह्मण को प्रणाम किया, चरण की धूल दी, बोले ब्राह्मण देवता मैं सब समय जीवन भर उनका आदर करता हूं, आपको क्या चीज की जरूरत है, बोलिए आप संकल्प लें और अब सब मैं आपकी, क्योंकि आप संकल्प लेने के बाद भी मुकर नहीं सकते हैं, अभी मुकर सकते हैं, ठीक है संकल्प, आपके जो कवच और कुंडल हैं जो जन्म से ही आप लेकर के आए, कवच किसको कहते हैं, कुंडल किसको कहते हैं, कवच वह होता है जो इन हाड़ों के बीच में वो लगा रहता है, जो बांध छेद करके भीतर नहीं जाएगा आदमी मरेगा, जब तक यहां नहीं लगेगा तो मरेगा, और उसका जग लोग ऊपर से पहनते थे लोहे के कवच, और उसका कैसा था, जग के साथ ही उसका लगा हुआ, इसलिए उसका मारना बड़ा भारी कठिन, नहीं मर सकता। और कुंडल कैसा, कुंडल किस लिए रखते थे, शोभा के लिए भी नहीं, और लटकता हुआ रहता था जिससे कि गले को न काट सके, दोनों तरफ गले की रक्षा करते थे, इसलिए वो मांग रहा, कवच कुंडल मिलने से ही अर्जुन उसे मार डाल देता, ठीक है तलवार लेकर के अपने कान को काट करके उसमें से कुंडल निकाल दिया, और छाती को यहां से काट काट करके हड्डियों में से और उसे निकाल करके दोनों को, ये है सब कर्मी, नीति परायण और कर्मी, इसे बढ़ा करके दानी और कर्मी क्या हो सकता है। इंद्र लेकर के बड़े खुश हुए, लेकर के जब चल पड़े तो अब उनका विमान ऊपर चले ही है, सोचा कि हमने ये दुष्कर्म किया, इसको कुछ बल देना है, उसे देख करके तब चल उसे जाकर के फिर बोले, अब कैसे आए ब्राह्मण देवता, हंसने लगे ये तो इंद्र है, समझ गए अब कैसे है पधारे सुना, अब तो ले लिया आपने, तो इसलिए कि मैंने अधर्म किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, अब इसके बदले मुझे कुछ दे करके तब जाना है, तब मैं जाऊंगा। सर ने कहा जी मेरा हाथ ऐसा कभी नहीं हुआ, सब समय ऐसा रहा है, माने क्या
दान लिया, दान लिया,
दान मैंने किया, कभी दान में भी आज तक नहीं लिया तो आपसे कैसे दान लिया, कभी देखिए कैसा। उन्होंने कहा मैं आपसे भीख मांग रहा हूं कि आप हमसे दान दीजिए, ये भीख हमको दीजिए, यही आपसे मांग रहा, बात में उलझा करके, और फिर वो अच्छा तो जब देना है तो अपनी शक्ति हमें दे, वज्र अब इन तक तो बड़े मस्ती हुए। कौन कुंडल कौन सा ले लिया मैंने, किंतु ये अब शक्ति दे रहा हूँ उस पर, जिस पर छोड़ेगा ये जरूर मरेगा, कोई रक्षा नहीं कर सकता, अब तो देने के देने पड़ गए। उन्होंने कहा जैसा कृष्ण है जैसा करें, अब अधिक सोचने की बात नहीं। उन्होंने क्या किया, वो शक्ति मैंने वज्र दे दिया। उन्होंने कहा जिसे देखिए एक बार चलेगा और जिसको चलाएंगे उसका प्राण जरूर हरण करेगा और उसके बाद में हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है ऐसी ही बात है, वो शक्ति ले ली। अरे कल महाभारत के युद्ध में जरूर अर्जुन पर छोड़ूंगा और उसे मारूंगा। अब तो और अच्छा हुआ हमने कौच कुंडल से दे दिया कि तो हमारा काम और सहज हो गया। कौच कुंडल रहने पर भी अर्जुन को माता की नहीं कोई चीज नहीं था, ये तो बहुत अच्छा। अरे आदमी ने कृष्ण को पता लगा, उन्हें जम्बक को आदेश दिया भीम के पुत्र को, ये जाओ हरी जाओ अभी महाभारत युद्ध कर दो, महाभारत लगा दो, महाराज में दुर्योधन को जैसे तैसे मारना है। वो आकर के एकदम बाणों की वर्षा करने में माया से सबको मोहित करके ऐसा कर दिया सब लोग मरे सर। अब दुर्योधन चिल्ला रहा है बचाओ 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 कर्ण बचाओ कर्ण, अब जैसे नहीं बचेगा तो कल लेकर के क्या करेगा। मैं मरा महाराज थोड़ा सा सांत्वना धैर्य धारण कीजिए, आज यदि अभी बच जाते हैं अर्जुन से मुठभोड़ी कल अर्जुन को मारकर के मैं महाभारत युद्ध समाप्त कर दूंगा। अरे कल की कौन देखा है, अभी आज ही मर रहा है, सारी सेनाएं मर रही है, अभी सब प्राणी आ सकता है, जल्दी से हमारी रक्षा करो। उस दिन रात को नहीं हुआ, रात को उसने अब क्या करें। अरे महाराज आप नहीं मान रहे हैं तो नहीं, अभी हमको प्राण तो बचाओ किसी तरह से। अच्छी जब आपकी इच्छा है तो शक्ति को चलाया और शक्ति से वो गिर करके मर गया और मरने पर कृष्ण ने रात को ही शंख बजाया कि आज प्राण तो पांडवों के और अर्जुन के प्राण बच गए, पर तो उसका ब्याह कोई बात नहीं। ऐसा कर्म भी कर माँ बाप के युद्ध में जब वो मर रहा है अर्जुन ने उसे मार डाला, अभी प्राण नहीं निकले हैं, प्राणों की रक्षा कर रहा है, गदा घुमा करके कौवे और चील से। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण वहां पर देखते देखते लाशों में से देखा जैसे यही कर्ण महाराज। महाराज मैं आपके पास आया हूँ किस लिए आया, आपके पास कुछ दान कीजिए। क्या मेरी लड़की की शादी धन के अभाव में नहीं हो रही, वो रुक रही है, थोड़ा सा सोना मुझे मिल जाए तो मेरी लड़की की शादी। अरे मेरे पास नहीं सोना कहाँ, मैं अभी मर रहा हूँ, महाराज आपके पास में है आप दे सकते हैं। उन्होंने कहा अच्छा कहाँ है, अरे हमारे दो दांत सोने के बनवा रखे हैं, इसमें हीरा भी लगा रखा है, इसका बहुत मूल्य हो सकता है, बेच देगा तो उसकी 10 लड़कियों की शादी हो जाएगी। गदा उठाया और मारा और टूट गया और उसको वो हीरे से जड़े हुए वो स्वर्ण का दांत। कैसा सत्कर, ब्राह्मणों का कैसा आदर करता है, जो बात कर देता है ये पक्की कहता है। उसकी गति क्या हुई, कृष्ण ने समझाया जो हम कहते हैं मानो माना, तो उस कर्म का मूल्य क्या है, यदि भक्ति नहीं करता है ये लोगों के समझ में दिमाग में नहीं आता है। सब कर्म का कोई मूल्य नहीं है यदि भजन न किया जाए, इस चीज को समझना है। इससे पहले ही बताया जब जाता तो कर्मनो लोकमनत्र कर्म बंधन तदर्थम कौरम कंतेय मुक्त संग तदर्थम, ये मुख्य उसमें है, भगवान की प्रीति के लिए तू कर्म कर, अर्पण भी नहीं तदर्थम। पहले बतलाया कि यज्ञ के लिए अर्थात विष्णु की प्रीति के लिए कर्म कर, ये यज्ञ है। जो कुछ भी आप भगवान की प्रीति के लिए करते हैं, रसोई बनाते हैं भगवान के लिए, फल लाते हैं, घर में काम करते हैं, ठाकुर जी के लिए अर्पण करते हैं, ये सभी यज्ञ है। किंतु इसमें भी एक बुद्धिमानी है, कुशलता है, तदर्थम भगवान के लिए करो कर्म, तब तो वो कर्म ठीक है भगवान के तरफ में ले जाएगा, अन्यथा वो कर्म बंधन का कारण हो जाएगा। ये कर्ण का जो जितना काम सब कर्म हुआ ये क्या हुआ,
बंधन का कारण,
फिर जन्म लेना पड़ेगा चलना पड़ेगा। इसलिए भगवान के लिए करो और आसक्ति शून्य होकर के करो। आसक्ति शून्य माने संसार, कर्ण का ऐसा था किसके लिए युद्ध किया? अपने लिए? किसके लिए? अपनी आन के लिए किया, अपनी नीति के लिए किया, प्रभु के लिए किया, इसलिए वो युद्ध कर रहा। इस चीज को समझना चाहिए। बुरे कर्म की तो बात, सब कर्म भी यदि अपने लिए किया जाता है, निष्कर्म अच्युत भाव वर्जितम कर्म की तो बात, कर्म सब समय अपवित्र है, वो संसार में डुबाएगा, सब कर्म भी डुबाएगा। सब कर्म माने क्या? एक आदमी माता पिता की बहुत सेवा करता है, माता के पिता की सेवा ही भगवान की सेवा है, इसके अतिरिक्त मैं भगवान नहीं जानता। पति की सेवा ही भगवान की सेवा है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। शास्त्र में कुछ कहानियां भी इस तरह की हैं, कथाएं। कोई स्त्री अपने पति की सेवा कर रहा था, कर रही थी, और कोई व्यक्ति संसार त्याग करके कुछ ध्यान किया और ऊपर से एक कुछ कौवे ने बीत कर दिया, देखा ऐसा तो वो जल गया, हजाब में सिद्ध हो गया। एक पति पता अपने पति की सेवा कर रही थी, वो वहां पर गया, भिक्षा दीजिए भिक्षा, भिक्षांग देही भिक्षांग देही, वो बार बार कह रहा था, वो सुन रही थी, इशारा किया, मैं कौवा नहीं हूं, जब मर जाऊंगा मैं अभी पति की सेवा कर रहा हूँ, पति देवता परमेश्वर है, मैं इनकी सेवा करके उठूंगा, तुम वहां पर चले जाओ। जी कौवे की बात ही नहीं, कैसी जानी कौवा की तो बात अभी तुरंत हुई, अभी यहाँ पर आया। पर उन्होंने गया, उनको भेज दिया किसी बेटे के पास, वो अपने पिता की सेवा कर रहा है, तो वहां पर जाकर के उसने ऐसा ही किया, उनको आने में विलंब हुआ, तो उस पर जो वो क्रोधित होकर के उसके तरफ में देखा, तो उसने कहा कि मैं कौवा नहीं, तुम उसके पास में जाओ। मैंने इसी तरह से सब जगह घुमाया। तात्पर्य क्या? पति की सेवा ही स्त्री के लिए धर्म है, पुत्र का धर्म है माता पिता की सेवा करना। ये सब चीजें क्या है? वर्णाश्रम के अंतर्गत में चित्त को शुद्ध करने के लिए पिता की सेवा ही हमारा परम धर्म है। ये बात ठीक है। अभी हम मर गए, पहले तो पिताजी मर गए, और पिताजी की सेवा कितने दिन करेगा, क्या करेगा? श्राद्ध करेंगे, अब फिर तुम दूसरा जन्म ले लेगा तो अब नया पिता हो जाएगा, उस पिता का क्या किया? कर्म चक्कर में घूमते रहेंगे। इसे सत्कर्म से भी रहा ही नहीं है, सत्कर्म करने पर उसका फल भोग करने के लिए नीचे फिर आना पड़ेगा, फिर संभक्ता सर्वलोकम पुण्य भक्तलोकम भी, फिर जगत में आना पड़ेगा। आप लोग हरिश्चंद्र की बात, हरिश्चंद्र जैसा दाता कोई जगत में हुआ, सुनते हैं कि ऐसा कोई पैदा नहीं। विश्वामित्र जी ने उनको स्वप्न में आदेश दिया, राज्य हमें दे दो, उन्होंने राज्य दिया। उन्होंने पूरा स्वप्न समझा, दूसरे दिन सचमुच में विश्वामित्र जी याद है कुछ क्या? क्या याद? उन्होंने सोचा कि वो तो निराज स्वप्न था, अरे स्वप्न में कुछ किया था, अरे राज्य तो हमको दिया ना स्वप्न, सब उनको हाँ तो दिया, तो राज्य मेरा हो गया। अब कुछ दक्षिणा दो, कितनी दक्षिणा? 500 सोने की मोहर, 1000 रुपये सोने की मोहर। मैं खजांची सिवा राजा, अभी खोल करके 1000 रुपये या सोने की अशक्ति दे दो। मित्र कहें अरे सबसे बाली, जब राज्य हमको दे दिया तो खजाना तेरा है, अब ये खजाना भी मेरा। तो उन्होंने सोचा कि सब मैं क्या करूं, खजे राज्य में से किसी से पैसा नहीं ले सकता, क्योंकि राजा प्रजाएं भी मेरी है। अब तुम अपना ये तुम्हारा कुछ अब नहीं है, अभी तुम है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा बेटा है, सिंह हो, इनको बेच करके भी हमारा दक्षिणा दो, उन्हें नरक ठोकना पड़े। जाकर के सोचा जैसे अपने राज्य में कहीं दिख नहीं, यहाँ पर नहीं देख सकते, ये तो मेरा है, पृथ्वी के अंदर में ये पृथ्वी मेरी हो गई, इसके बाहर जाकर के अपने को बेच सकते, अब पृथ्वी से बाहर कहा सुझाव दिया। अच्छा एक बात करो, काशी हमारे राज्य में नहीं, ये बाहर है, तुम वहां पर जाकर, वहां पर गए पहले अपने बेटे को बेचा एक ब्राह्मण के यहाँ, निष्ठू अपने काम कराएगा जो आज तक कभी नहीं, बर्तन मांजना पड़ेगा, घर में झाड़ू देना पड़ेगा, जो जो चाय का बर्तन मांजना पड़ेगा, जो कुछ काम करना है वो करेगा। अपने प्यारे एक लौटे बेटे को दे दिया, कितने में? अढ़ाई सौ सोने के सिक्के के, चौदह अढ़ाई 1000 देना है। अपने स्त्री को बेचा 250 में, एक उसी ब्राह्मण ने शायद कुछ नहीं दिया, हमारे घर में सब काम करना पड़ेगा, उनको बेच दिया। अपने को बेचा कहा? डोम के यहाँ, जो मुर्दा घाटी में कर्म शुरू करता था। इसलिए अपने कर्म में जो सबसे बाध्यता है उसको पूरा करने के लिए ये कर्म का ये विचार है जो बतला रहा हूँ। कर्म की गति कहाँ जाए? पहले तो कर्म देखे यहाँ तक आना था, अपनी स्त्री को भी देखे, किंतु ये ममता करके मेरी स्त्री है और मेरा बेटा है। इस समय सब देखा, सूर्य वंश में आया है, राम इस वंश में आएंगे, इस राम के वंश को कलंक न करे कर्म मार्ग के द्वारा, इसको सुधार करना चाहिए, इसको कृपा करनी चाहिए, इसलिए कर्म मार्ग से हटा करके भक्ति मार्ग में लाना चाहिए। ये उनका विचार, लोग इसको समझ नहीं पाते। रोहतास को रात में सांप काटा, एक दिन इनकी मैया उसी ब्राह्मण के घर में उसने बेटे को रात में अपनी गोदी में लेकर के विलाप करती हुई, ब्राह्मण से कुछ पैसा मांगा, जैसे कहा कर देना होगा, उसने नहीं दिया। हमने तो तुम खरीदा है, अब पैसा नहीं दूंगा, कितना निष्ठुर विलाप करती हुई, भाई हमारे साथ में चलो। अच्छा आदमी कोई होता तो साथ में जाता, कोई नहीं, अकेले दिवस हो सके गई, अंधकार रात, बरसात कुछ कुछ किए थे, जारे का समय कोई घर से नहीं, कुत्ते उनके पीछे पीछे कुछ जरूर भौंक करके चल रहे हैं, डरावना एकदम डरावना श्मशान की भूमि, रात में वहां पर कोई नहीं, भूत प्रेत खेलते हैं। और उसने बेचारी अपने बेटे को लेकर के गई, लालटेन लगा के कोई व्यक्ति आया, कौन है, क्या किस लिए आई, ये रो रही है, कौन है ये सुनते ही उनका, अरे हमारे पति देव का तो ऐसे ही स्वर्थ है उनका, तो समझ तो गई, बिना कर दिए किसी बेटे का या किसी व्यक्ति का मुर्दे का संसार या नहीं हो सकता है, पहले कर दो, ये कर्ज हमारे पास में देने के लिए तो कुछ है नहीं। देखा बिजली चमकी, देखा ये रोहित आज को खड़ा है मरा हुआ, और ये मेरी पत्नी, और उनकी पत्नी ने देखा, क्या नाम सत्या,
बस बस
देखा कि हमारे पति देव खड़े, देखा कि आंखों में आंख ला गए, मेरी पत्नी है, ममता गई, ये मेरा पुत्र मारा गया, किंतु कर्म ऐसा सत्कर्म करने के लिए अपने वचन से हम संकल्प से चलेंगे नहीं, कहा तुम मेरी स्त्री हो चाहे जो हो, मेरा बेटा हो, किंतु मैंने अपने को बेचा है, इसलिए उसका काम हमको पूरा फर्ज करना है, इसलिए तुम कर दे करके कुछ करो। तो उसने क्या किया, जिस कफन में या कपड़ा को फाड़ दे, यही फाड़ रही, इतने में महाराज धर्मराज आ गए, आगे विश्वामित्र जी आ गए, उनका तात्पर्य क्या था, संसार में जो व्यक्ति इस शरीर में मैं का भाव रख करके और कर्म करता है, उसका कर्म कभी भी शुद्ध नहीं, उस कर्म से मुक्ति नहीं और भगवत भक्ति नहीं, उसे सुख नहीं मिल सकता, इसलिए जरूरी है इतना अधिक करने की क्या जरूरत, एक बार कृष्ण नाम क्यों नहीं कर देते, मैं तेरा हूं ऐसा क्यों नहीं करते, सर्वधर्मान पर सज्जमान एकम शरण। आखिर उनको क्या हुआ, उन्होंने कहा अब तुम पर मांगो, उन्होंने कहा तुम्हारा बेटा ये परिस्थिति है, रोहतास से जी उठे, हाथ रखा जी गया, उन्होंने कहा मैं ही वो ब्राह्मण और मैं ही ये यहाँ का डोम बना था और तुमको खरीदा, और मैं अपने उसे संकल्प से उसे दूर कर देता हूँ, अब तुम मुक्त हो गए, साथ ही साथ उनको स्वर्ग भेजा और रोहतास को गद्दी पर बैठा दिया। कर्म मार्ग से कहां गए, किंतु स्वर्ग जाकर के क्या हुआ,
देखी यदि स्वर्ग में भी जाएगी तो क्या करेगी, देखी समझते हैं। आज जब से आदमी नहीं समझते, पैर से मारो तो ऊपर उठ करके और फिर गेहूं इत्यादि को कूटती है, ढेकी होती है ना, नहीं समझते हैं। चावल इत्यादि गेहूं इत्यादि को कूटते हैं, पहले ढेकी होती थी, स्त्रियां परिश्रम करती थी, उसकी डोढ़ा होता था चलाने के लिए, और दाल तलने के लिए चक्की होती थी, आटा पीसने के लिए जाता होता था, अब वो सब विज्ञान चला गया। अब विज्ञान से दबा दो बस, तो उससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर और मोटापन, आज देखा है वहां पर मोटापन दूर करने का उपाय ना के क्या, मोटापन दूर कीजिए,
मोटापन
पहले मोटापन दूर करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए कहते हैं जब वो गए और क्या हुआ, ते तब मुक्ता सर्वलोकम विशालम थीने पुण्य मर्तलोकम विशालम एम श्री धर्म प्रपन्न आगतागतम। इन सब कर्मों से अधिक स्वर्ग में जाकर के अब फिर कुछ दिनों के बाद वहां से लुढ़क जाएंगे, और यहां करके फिर यहां पर गधे हुए न कुत्ते हुए न सुकर हुए न क्या हुए, कोई चीज क्या जरूरत है इसलिए इन सब की सर्वधर्मान सबसे जमान पहले एक कृष्ण का नाम करने से ही सब कुछ, एक कृष्ण नाम करने से ही सब कुछ हो जाए। इसलिए नाम का सहारा लीजिए, कलयुग केवल नाम लेत भव सिंधु कहानी कर्म विचार की जन्म, नाम लेने से भव सिंधु जाना आना मरना बुढ़ापा और कष्ट मोटापा छोटापा सब कुछ हो जाएगा। एक नाम ऐसी महाशक्तिशाली भगवत स्वरूप है, 60 वर्ष के बाद में किसी की बुद्धि का मत गुजारो, माने क्या, जिसने 60 वर्ष तक एक काम को किया उसकी बुद्धि कहीं ना कहीं कर्म मार्ग में इधर उधर मुक्ति में ना कहीं वो लग गई, 1000 उसे सिर मारो वो दीवार में सिर मारता है, उससे अधिक कुछ नहीं। बच्चों का सिर तक बहुत कोमल होता है, 50 वर्ष तक उसको कुछ शिक्षा दी जाती है, भक्ति मार्ग में लाया जाता, उसका संस्कार ऐसा होना, वहां तक तो संस्कार दिया जा सकता है, इसके बाद में संस्कार नहीं दिया जा सकता, उसे छेड़खानी मत करो, वो कर्म करता है तो उसको कर्म ही करने दो, और उसे जो कर्म आप कर रहे हैं बहुत अच्छा है, जरा इसमें एक बात कर देते हरे कृष्ण करते हुए बस इतना, नहीं समझेंगे लास्ट समझाओ, घूम फर करके कहां आए, घूम फर करके बन जाए, गीता का सब पढ़ लिया 18 अध्याय, अब घूम फर करके कृष्ण ने कहा अर्जुन को ये युद्ध करो बस कर्म बात, राम ने भी तो कर्म किया कृष्ण ने भी कर्म किया इसी तरह से, इसलिए इन सब चीजों को छोड़ करके सर्व धर्मान परिसज्यमान एकम शरणम प्रजा अहम स्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षे जानाम। इसलिए हम जहां पर जिस स्थिति में वहीं से भगवान का नाम आश्रय, और यदि सदगुरु पदाश्रय हो गया, भक्तों का संग यदि हो गया, तो ये भगवान की बड़ी चिंता है, एक कीर्तन ऑफ हो जाए कौन करेगा, कौन कर महाराज टीवी थे बड़े बारी करनी, उन्होंने क्या किया, एक कबूतर को बचाने के लिए अपना सारा शरीर का मांस दे दिया और अपने आप पल्ले पर चढ़ गए, आप लोग जानते होंगे ऐसा कभी कोई हुआ। एक दधीची नाम के ऋषि थे, ऋषि थे लेकिन तो बड़े कर्मी थे, सब कर्मी, उन्होंने अपने हड्डी को देने के लिए इंद्र ने उनसे हड्डी मांगी विस्तार को मारने के लिए, उसने जीवित शरीर से कहा जैसे जीवित शरीर से ही आप अपनी हड्डी दे दी, हंसने लगे आप ऐसे स्वार्थी जो अपने लिए देवताओं की रक्षा करने के लिए और हमारे जीवित शरीर से आप हार चाहते हैं, मुस्कराने लगे इंद्र लज्जित हो गए, अच्छा एक गाय को ले आओ, गाय ले आया और शरीर में बूरा और दही चारों तरफ से लपेट दिया, गाय ने उसको जीवित रहते ही चाहते समाधि से अपने शरीर से आत्मा मन को हटा करके और मन से भी आत्मा को आलस से कर दिया, इतनी ऐसे शक्तिशाली योगी पुरुष थे, विचार के ऐसा होना जगत में बहुत कठिन है, एक दूसरी तरफ में चलिए, ये तुलना के लिए कर। एक झिलनी थी उसका नाम था सबर। नाम कथी होगी कि नहीं होगी कोई पता नहीं, गुरु जी की कुछ कथा सुन रखी थी और उसको पता था कि राम आने वाले हैं, रोज राम के लिए प्रतीक्षा करती अपने घर से रास्ते तक, रोज फिरों फूल बिछा देती राम इसके ऊपर से वो करते, कब आएंगे अभी अभी कोई ठीक नहीं। पेड़ से वृक्ष से फल खा करके देखती कौन सा फल मीठा है किस पेड़ का, उस आम को जूठा करते नहीं, लोग तो जूठा ही कहते हैं, उसमें भी कोई हर्ज नहीं, तो वो जूठा फल यदि रखेगी तो 10 दिन के बाद में सड़ नहीं जाएगा, इसलिए उस पेड़ के दे अपने देखते ये पेड़ का मीठा दे रहा है तो उसको संग्रह कर दिया, रामायण उनको खिलाऊंगा। इस तरह से रास्ते करते करते एक दिन राम आए, ब्रह्मवादियों के यहाँ नहीं गए, जैसे ये योगी थे ना योगियों के नहीं गए, उनको भगवान के नाम में भगवत की भक्ति में विश्वास नहीं, वैष्णव में विश्वास नहीं, अपने कर्म में और अपने ज्ञान में उनको भरोसा, वहां नहीं गए। आए कहाँ, सबरी के घर पर आए, सबरी बड़ी प्रसन्न हुई, उनके पैर धुलाए, आज उसके हजारों वर्षों का अरमान पूरा हुआ है, जो कुछ दिया राम परिचित होकर देख हो गए। अच्छा अब हम विचार करें, सीढ़ी भी बड़े हैं न सबरी बड़ी, गधी की बड़ी है अन ये सबरी जो है धीमनी बड़ी, कौन बड़ा है,
सबरी बड़ी
क्यों
ठीक
है, इसलिए कर्म के धोखे में ज्ञान के धोखे में मत रहिए, एक अपवित्र होते हुए भी स्त्री जाति होते हुए भी स्त्रियां अधिकांश रूप में अपवित्र रहती हैं, बच्चा हुआ तब अपवित्र, रजस वाला हुई तब अपवित्र, इसलिए उनको उपनयन नहीं दिया जाता, किस लिए अपवित्र उनको होना है, इसलिए ब्रह्म गायत्री भी उनको नहीं दी जाती इसीलिए। किंतु ऐसी अपवित्र रहने वाली भी गोपियां कृष्ण को अपवित्र, बीज पत्नियां पा गई, नाग पत्नियां उन्हें पाया, झेलनी ने राम को पाया, कोई ज्ञानी व्यक्ति में से भगवान को पाया, भगवान ने छलना कर दिया उनको, कैसे छलना किया, पांडवों के लिए उन्होंने झूठ किया, छल किया, ठगा दूसरों को, कैसे दुर्योधन भीष्म पितामह को प्रसन्न किया, महाराज हमारी स्त्री को एक वरदान दे दी है, ये अजर अमर है, सौभाग्यवती है, नजर रात में अपनी स्त्री को भेज देना हमारे यहाँ 12 बजे रात में, उस समय मैं भगवान का ध्यान करूंगा और उस समय मैं ध्यान करने पर मेरी शक्ति संचयित होगी, उसके सिर पर हाथ रख करके कह दूंगा यह तुम सौभाग्यवती रहे तुम्हारा पति नहीं लड़ेगा, महाभारत के युद्ध में तुम यही होगा। इधर में कृष्ण ये समझ गए, आज भीष्म पितामह जी रात में उसको एक तरह से बर दे गए, कृष्ण जी द्रौपदी के पास में गए, सखी आज एक बड़ी भारी विपत्ति आने वाली है, तुम एक बात करो, तुम अंचल से अपना मुख ढक लो, वर्षा हो रही है, अंधकार रात है, अभी पितामह के पास में जाना है, बोलना मत कुछ, आज दुर्योधन की पत्नी लक्ष्मण या हनुमती हनुमती वह जाएगी रात में और उसको पितामह बर दो सौभाग्य, तुम आज रात में चलो उससे पहले, आज वर्षा हो रही है, आज वर्षा मेरी इच्छा से वर्षा हो रही है, खूब भयंकर वर्षा, वो नहीं आएगी, दुर्योधन नहीं लेकर के आएगी, कल होगा, आज करो सो कल का और कल करो सो परसों, क्या संकट में पड़े हुए हो, और तुम क्या करो, कल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में पल रहे हो, ये भी बहुत ही पड़ेगा, अभी चलो, बस 12 बजे रात में वर्षा खूब जोर से हो रही है, रथ ले आकर के द्रौपदी को वहां पर उसमें चढ़ाया, अब वहां पर कृष्ण जी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो आएगी भानुमती आज उसको बर देना, सोच रहे हैं कैसे, यदि सौभाग्यवती हो जाएगी तो राज्य को जीत नहीं सकते, पांडव लोग जीत नहीं सकेंगे, लेकिन तुमको जीत होनी चाहिए। मैंने पहले से ही अर्जुन को बताया कि तुम्हारी विजय होगी, वो तो मेरी विजय झूठ हो जाएगी। सोच कर रहे थे, इतने में ही ध्यान करते करते इतने में ही दरवाजा खटखटाया, भानुमती आ गई, दुर्योधन उसको लेकर के आए। इधर में दुर्योधन ने कहा बड़ी वर्षा हो रही है, आज रहने तो कल चलेंगे, कोई बात नहीं, इसलिए वो नहीं आए, किंतु कृष्ण उनको लेकर के चले आए। कृष्णा कृष्णा ने दरवाजा खटखटा करके भीतर में गई, घूंघट निकाल करके और करके उन्होंने देखा नहीं और प्रणाम किया, प्रणाम करके हाथ जोड़ कर उनके सामने में खड़ी हो गई। देखा जी भानुमती आ गई और ऐसे प्रणाम करके खड़ी है हमारे सामने, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, मैं तेरा पति नहीं मरे। सुनते ही उसने घुघट उठा लिया, मुस्कुराने लगी। अरे द्रौपदी तू कैसे आ गई, कौन लाया तुमको, कौन लाया बतलाओ तो, हमारे लाने वाला वो बाहर खड़ा है, बस अपने जिसका ध्यान कर रहे थे वही वहाँ पर आया। कृष्ण के चरण प्रभु, आप जिसकी रक्षा करना चाहता है उसको कोई नहीं चिंता, यहाँ पर कर्म मार्ग उलट गया, दुर्योधन का कर्म मार्ग था उलट गया, यहाँ पर भक्ति प्रसिद्ध होकर उनकी रक्षा, इसलिए कर्म मार्ग हमारी रक्षा नहीं कर सकता, इस चीज को समझिए। सब कर्म भी नहीं, सब कर्म को भी जलांजलि दे देंगे, न धर्म न धर्म, हमको जरूरत है, हम तो राधा कृष्ण की सेवा करें, झूठ बोलना पड़ेगा इसके लिए तो झूठ बोलेंगे, बसदेव ने झूठ नहीं बोला, अर्जुन ने हजारों बार झूठ बोला कृष्ण के लिए, किंतु कृष्ण के लिए सब चीज अपने लिए नहीं। यदि कृष्ण के लिए हम पाप भी करेंगे तो वो पाप नहीं है, क्या होगा, परम धर्म है, और अपने लिए संसारिक शरीर के लिए यदि हम करेंगे, धर्म भी कर रहे हैं परम धर्म भी कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो मिथ्या, वो नर का कारण बन जाएगा। इसलिए भगवान के भजन में, भगवान का भजन सबसे सुलभ है, नाम हरे नाम हरे नाम, इसलिए नाम कीजिए, सभी भव सागर को पार करके अपना परम कर्तव्य निर्वाह करके भगवान के चरण में पहुंचे, इससे सर्व सहज और कोई उपाय नहीं। समते समते द्वैपायनो विरह कात्रया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिवानुतोऽस्मि। बड़े आनंद की बात है कि यहाँ पर भागवत कथा अब तक कथा उद्धव जी ब्रज में आए हैं और गोपियों के साथ में उनका वार्तालाप हो रहा है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इस पर विचार करें, आजकल जगत में बहुत तरह की समस्याएं हैं, जितने जितने बच्चे हमारी हम लोग वैज्ञानिक उन्नति कर रहे हैं, उसके लिए तरह तरह के साधन हो रहे हैं, तरह तरह की चीजों का इन्वेंशन हो रहा है। देखते हैं कि रसोई घर से आरंभ करके बम बनाने के कारखाने तक कितनी तरह की उन्नति हुई। पुरानी जो रीतियां थी वो बदल गई, उसके बदले नई पद्धतियों ने नई पद्धतियां आविष्कृत की, फिर स्विच दबाने से ही डाइनिंग रूम आ जाएगा, स्विच दबाने से ही रसोई घर आ गया, भोजन प्रस्तुत है बटन दबा दिया, सोने का कमरा आ गया, ड्राइंग रूम आ गया, दिमाग हो गए, दिमाग खराब हो गया, दिमाग को बदल दीजिए, हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट को दूसरी को लेकर के आरोपण कर दीजिए, प्रत्यारोपण कर दीजिए, जाना है बैलगाड़ी की जरूरत नहीं, घोड़े की भी जरूरत नहीं, जो काम कार भी नहीं कर सकती वो मन से थोड़े से कम देख लें, एरोप्लेन, पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर में आपको पहुंचा देगा। जिस काम के लिए आपको जाना है वहां, अब वहां पर जाने के लिए जरूरत नहीं, बस चलता फिरता वो ले लीजिए काम में, स्विच दबाइए, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, हॉलैंड, होलोलैंड इत्यादि जहाँ से हो वहीं का चित्र के साथ उनसे देखें, उनसे बातचीत कर लीजिए। हमेशा समझता कि पहले ये सब चीजें नहीं थी, कैसी कैसी सब उन्नति हुई, आदान प्रदान एक मुट्ठी में आ गया, सब विश्व एक मुट्ठी में आ गया। इसलिए हम अपने सुख के लिए बड़े बड़े साइंटिस्टों ने इन सब चीज का आविष्कार किया और विचार कीजिए इससे लाभ क्या हुआ, बहुत लाभ हुआ। हम कहा आयरन या पत्थर इन स्टोन एज से अब कहाँ चले आए, गोल्डन एज को भी पार कर सुख समृद्धि की दृष्टि, किंतु अब इसका एक दूसरा पहलू भी है, सिक्के के दो पहलू, दूसरा पहलू है उसको विचार करें। ये सब सुख की वस्तुएं तो हम लोगों ने प्रस्तुत की, किंतु सुख हुआ या नहीं, सुख उन वस्तुओं में है या किसी और चीज में है, इन सब समृद्ध चीजों में से माइनस प्रेम कर दीजिए, प्रीति, ये सब घर में आपके मौजूद है किंतु पत्नी से आपकी प्रीति नहीं, तो ये सब चीजें आपके लिए सुखकर होंगी। पिता और पुत्र में